ओम शांति। आज का जो टॉपिक है वो है कभी कभी की माया। इस बेहद की दुनिया में जब हम चारों तरफ देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि हर आत्मा कुछ ना कुछ बनना चाहती है, कुछ ना कुछ पाना चाहती है। यदि हम उस पुरानी दुनिया को देखते हैं तो उसमें कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई बैरिस्टर, कोई बिजनेसमैन, कोई कुछ बनना चाह रहा है। और इस ब्राह्मण परिवार की दुनिया को देखते हैं तो यहाँ आत्माएं कोई श्रेष्ठ ज्ञानी बनना चाहता है, कोई श्रेष्ठ योगी बनना चाहता है, कोई महारथी बनना चाहता है, तो कोई श्रेष्ठ तपस्वी बनना चाह रहा है। तो ये जो अनवरत एक दौड़ सी संसार में लगी हुई है, इस दौड़ में आत्माएं कभी कभी कुछ पा लेना चाहती है तो कभी कभी कुछ खो देना चाहती है। उन जीवन के उन अच्छे पलों को, उन अच्छे लम्हों को जिनमें उसने कुछ हासिल किया था, कुछ पाया था, आत्मा भरपूर हुई थी, उनको वो सदाकाल के लिए पाना चाहती है। और जिन पलों में, लम्हों में वो दर्द से भर गई थी, हिल गई थी, आंदोलित हो गई थी, उन पलों को वो सदा के लिए विदाई दे देना चाहती है। तो इस दुनिया में जो ये दौड़ लगी हुई है कुछ पाने, कुछ बनने, कुछ खोने की, या फिर ये जो कश्मकश इस दुनिया में चल रही है, इसके बीच में कुछ ब्राह्मण आत्माएं ऐसी भी हैं जो अनवरत सतत एक पुरुषार्थ में लगी हुई है। और वो पुरुषार्थ क्या है? वो उनका पुरुषार्थ गुप्त है, और वो पुरुषार्थ है मैं कौन हूं बनने का। वो खुद की खोज में लगी हुई है, खुद को अनुभव करने की तलाश में लगी हुई है कि मैं कौन हूं। तो इसके लिए बाबा ने एक महावाक्य कहा है कि जिस दिन तुम स्वयं को संपूर्ण रीति जान जाओगे, उस दिन तुम संपूर्ण बन जाओगे। बस पुरुषार्थ हमारा इतना सा ही है कि हमें खुद को संपूर्ण रीति से जानना है। अभी हम खुद को संपूर्ण रीति, संपूर्ण क्या, थोड़ा भी नहीं जानते हैं, खुद की खोज में ही लगे हुए हैं। तो वो जो आत्माएं हैं जो पुरुषार्थ कर रही हैं मैं कौन हूं की तलाश का, उसमें, उस पुरुषार्थ में चलते चलते कभी कभी क्या हो जाता है कि कभी कभी की माया उनके जीवन में एंटर हो जाती है और उन्हें पता भी नहीं पड़ता है कि हमारे जीवन में वो माया आ चुकी है। माया बहुरूपी है। बाबा ने कहा आपको भी बहुरूपी बनकर माया के बहुरूपों को परख कर, जब आप परख लेंगे उसके बहुरूपों को, तो आप मास्टर मायापति बन जाएंगे। तो हमें मास्टर मायापति बनना है। तो इसके लिए हमें प्रश्न उठता है कि इसके लिए हम माया को कैसे परखें, उसके माया के विभिन्न रूपों को कैसे जाने। तो माया के विभिन्न रूपों को जानने के लिए, परखने के लिए कुछ पॉइंट्स निकाले हैं। उनमें पहला पॉइंट है न्यारेपन की साधना में कभी कभी की माया। न्यारापन बहुत जरूरी है। बाबा भी कहते हैं बच्चे न्यारे बनो तभी तुम प्यारे बन पाओगे। परंतु क्या होता है ब्राह्मण परिवार में कि न्यारेपन के नाम पर हम बिल्कुल सूख जाते हैं। कैसे सूख जाते हैं? स्थूल रूप से हम व्यक्ति से डिटैच होना चाहते हैं, परिस्थितियों से डिटैच होना चाहते हैं, हर एक सिचुएशन से, हर एक चीज से हम डिटैच होना चाहते हैं स्थूल रूप से। जबकि बाबा तो हमें हरा भरा वृक्ष बना रहा है कि ऐसा हरा भरा वृक्ष कि जिसमें यदि कोई पत्थर भी मारता है तो वृक्ष उसको शीतल छाया भी देता है तो फल भी देता है। जो उसकी पालना करता है वृक्ष की, जो उसे सींचता है, बड़ा करता है, उसको भी, प्यार देने वाले को भी वो फल और शीतल छाया देता है। तो उस जो मार रहा है उसको भी देता है। जितने आप उसको पत्थर मारते हैं बदले में वो उतने फल देता है। तो हमें भी क्या करना है कि डिटैचमेंट हमें स्थूल रूप से नहीं करना है, हमें सूक्ष्म रूप से हमारे बुद्धि के तल पर, हमारे मन के तल पर जो भाव उठते हैं, किसी व्यक्ति के आने से भाव उठते हैं, किसी परिस्थिति के आने से, या किसी भी रीजन से जो भाव उठते हैं, उन भावों से हमें डिटैच होना है। चाहे वो मार का भाव हो, चाहे वो प्यार का भाव हो, चाहे वो लगाव, झुकाव, प्रभाव, कोई भी विकार का भी भाव हो, उन भावों से हमें डिटैच होना है सूक्ष्म रूप से, स्थूल रीति डिटैच नहीं होना है। तो माया किस रूप में आती है? स्थूल रूप में आती है। तो हमें इस चीज में अवेयर रहकर खुद को इससे बाहर निकालना है। फिर सेकंड पॉइंट है समर्पण भाव की साधना में कभी कभी की माया। समर्पण भाव, समर्पण शब्द ही बहुत खूबसूरत लगता है जब सुनते हैं समर्पण। तो समर्पण भाव, भक्ति में गोपियों का समर्पण भाव का गायन बहुत ज्यादा है। पूरी तरह से वो कृष्ण के लिए समर्पित हो गई थी। उनमें जो राधा गोपी है, सर्वश्रेष्ठ गोपी गाई जाती है, तो राधा का जो समर्पण था वो सबसे ऊंचा समर्पण था। उसमें क्या होता है कि सब कोई तन का समर्पण करते हैं, कोई मन का करते हैं, कोई धन का करते हैं, कोई किसी चीज का करते हैं, लेकिन राधा ने स्वयं को ही कृष्ण के लिए, उस मैं को, उस कृष्ण के लिए पूरी तरह से समर्पण कर दिया थी। उनकी चेतना कृष्ण की ओर लगातार बहती रहती थी। वो कृष्ण में इतनी खो गई थी, इतनी लीन हो गई थी कि उन्हें खुद का स्वयं का भान भी नहीं रहा था। गोपियां भी देहभान से बिल्कुल परे डिटैच हो गई थी, कृष्ण में ही खोई रहती, घर के सारे, ऐसा गायन है भागवत में, सारे कार्य करती थी पर कृष्ण में लीन होकर करती थी। तो उसके लिए श्रीमद् भागवत में एक रास पंचाध्यायी करके पाठ है जिसका पारायण करते हैं भक्ति वाले लोग। उस पाठ को पढ़ने से क्या होता है, श्री कृष्ण की पराभक्ति प्राप्त होती है। तो उस पाठ को मैं भी बहुत करती थी, सालों किया है, बहुत बढ़िया है वो। तो उसमें क्या होता है, रासपंचाध्यायी के पहले पाठ में शरद पूर्णिमा की रात को कृष्ण मुरली बजाते हैं और सारी गोपियां उस मुरली को सुनकर जिस स्थिति में रहती है उसी स्थिति में उस कृष्ण के पास जंगल में पहुंच जाती हैं एकांत में। तो फर्स्ट अध्याय में पहुंचती है, कृष्ण उनको मीठी मीठी सी उलाहना देते हैं कि आपको ऐसे नहीं आना चाहिए, आपकी फैमिली क्या सोचेगी। सेकेंड अध्याय में क्या होता है कि रास स्टार्ट होता है तो गोपियों को अहंकार आ जाता है कि भगवान हमारे साथ है, जो संपूर्ण है वो हमारे साथ है, वो हमारे लिए मुरली बजा रहा, हमारे लिए सब कुछ कर रहा, उनको अहंकार आ जाता है। तो कृष्ण अंतर ध्यान हो जाते हैं। थर्ड अध्याय में जब वो अंतर ध्यान हो जाते हैं तो गोपियां, राधा गोपी भी उनमें रहती है, सारी गोपियां विरह से भर जाती है। फिर वो विरह गीत जिसे गोपिका गीत कहते हैं वो गाती हैं। वो 19 श्लोकों का गीत है, बहुत खूबसूरत गीत है, जयति तेदिकम जन्म नव, पूरा बहुत खूबसूरत गीत है। तो उस गीत को गाने के बाद वो पुकारती हैं उस कृष्ण को कि आप आ जाओ, हम विरह से तृप्त हैं। तो श्री कृष्ण फिर आते हैं उनके उस गीत को सुनकर। फिर उनकी फोर्थ अध्याय में थोड़ी सी रूहान होती है और फिर फिफ्थ अध्याय में महारास होता है। महारास में आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। तो ये हम ही सब गोप गोपियां हैं, हम में से कोई राधा है, कोई ललिता है, कोई सी गोपी है। तो हमारा ही वो गायन है कि बाबा जब हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन में क्या आ जाता है, कई बार कभी कभी की माया एंटर हो जाती है और अहंकार आ जाता है। वो अहंकार हमें क्या करता है, बाबा से दूर कर देता है। हमें लगता है कि हमारे साथ वो चल रहा है, हमारे लिए मुरली चला रहा है, पर वो अहंकार हमें बाबा से दूर कर देता है। फिर हम कहते हैं कि बाबा मिलकर भी हमें नहीं मिला है। समर्पण भाव में सेकंड माया आती है कि हम बाबा से कहते हैं, बाबा जो भी मेरा है वो तेरा, लेकिन हम क्या कर देते हैं, फिर तेरे को कम मेरा कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। तो हम अवेयर रहें कि हमारा समर्पण उसके लिए सच्चा हो, राधा जैसा हो, मीरा जैसा समर्पण हो, कि हम खुद को ही, जिसको बाबा कहते हैं देह भान को टोटल भुला दो, वैसा समर्पण हमारा हो। तो हमें अवेयर रहना है कि हमारे समर्पण में कहीं माया मिक्स तो नहीं हो गई है, कभी कभी की माया। फिर थर्ड पॉइंट है आत्मिक दृष्टि की साधना में कभी कभी की माया। हम सब ज्ञान में फर्स्ट डे आते हैं तो हमको यही सिखाया जाता है कि खुद को आत्मा देखो और सर्व को आत्मा देखो। हम आत्मिक दृष्टि का अभ्यास स्टार्ट कर देते हैं, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये, लेकिन फिर क्या हो जाता है कि हमारे, जब उनको निकट से जानते हैं तो हमारे अंदर ये भाव आने लगता है कि ये आत्मा है, लेकिन बैकग्राउंड में क्या चलता रहता है, ये क्रोधी आत्मा है, ये आत्मा है, ये लोभी आत्मा है, ये विकारी आत्मा है, ये ऐसी आत्मा है, ये वैसी आत्मा है। तो कहीं ना कहीं वो आत्मिक दृष्टि का अभ्यास ना होकर दैहिक दृष्टि का अभ्यास हो जाता है। हमें लग रहा है हम आत्मिक दृष्टि का अभ्यास तो हम अवेयर रहें कि ये कभी कभी की माया हमारे जीवन में एंटर ना करे। हम आत्मा देख रहे हैं तो दृष्टि देना माना उस आत्मा को, उस आत्मा की क्वालिटी से, गुणों से, शक्तियों से भर देना। जैसे बाबा की दृष्टि देखें हम, ब्रह्मा बाबा की दृष्टि कितनी वात्सल्य से भरी हुई प्रेममयी दृष्टि है, लेते हैं तो भरते हैं। मम्मा की दृष्टि देखो कितनी शक्ति से भरी हुई है। तो हम भी वैसी ही दृष्टि दूसरी आत्माओं को दे सके, बैकग्राउंड में कहीं विकार से भरी हुई दृष्टि उनको ना दे। तो इस कभी कभी की माया में हमें अवेयर रहना है। फिर अगला है साक्षी भाव की साधना में कभी कभी की माया। साक्षी भाव क्या होता है कि जो अंदर से देख रहा है, जो अंदर से सुन रहा है, उस पर अटेंशन रखते हुए हमें उस कुदरत के खेल को देखना है। पर हम कुदरत के खेल, उस पर अटेंशन रखकर इस कुदरत के खेल को देखते जाते हैं, पर कब हमारी दृष्टि उस देखने वाले से हटकर दूसरों पर खिसक जाती, देह पे खिसक जाती, हमें पता नहीं चलता। बहुत ज्यादा सूक्ष्म में हमें अटेंशन भीतर में रखना पड़ेगा कि हमारी दृष्टि उस दृष्टा से ना हटे जो कि मैं हूं, ओरिजिनल आई हूं। फोर्थ पॉइंट हो गया। फिर अगला है कि ज्ञान योग धारणा सेवा में कभी कभी की माया आ जाती है। सेवा में कैसे आती है कि सेवा में हम क्या नाम मान शान के रूप में, अहंकार के रूप में आती है, फिर हम कहते हैं माया आ गई, हमारे संकल्प चल रहे हैं, तो हम उन्हें चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम बोलने लगे कि माया नहीं आ गई है, बाबा आ गए, खुद से झूठ बोलना चालू कर दे माया नहीं आई है, बाबा आ गया है, संकल्प नहीं चल रहे हैं, बाबा चल रहा है। हर चीज में नेगेटिव भी आ रहा है उसमें बाबा 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 ऐड कर लें तो हम माया से बच सकते हैं हाँ बाबा से जोड़ दें। फिर अगला है धारणा। धारणा में कैसे माया आती है? हम सूक्ष्म धारणाएं करते हैं, स्थूल धारणाएं करते हैं, तो उसमें आकर्षण के रूप में, सूक्ष्म प्रलोभनों के रूप में हमारे जीवन में माया एंटर कर जाती है। सबका हमें अनुभव है, डिटेल करने की जरूरत नहीं है। योग में योग में माया कैसे आती है? हम योग में बैठे हुए योग कर रहे हैं, धीरे 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 संकल्प कम होते 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 हमारी स्थिति ऐसी होती है कुछ क्षणों के लिए कि हम संकल्प से परे हो जाते हैं। उस स्थिति में बैठे हैं और सडन एक मन में एक स्पंदन, एक लहर सी उठती है एक संकल्प की। सोच लीजिए वही संकल्प, वही लहर क्या है आपके जीवन में कभी कभी की माया है जो आपको परमधाम से डायरेक्ट नीचे ले आती है। तो वो कोई व्यक्ति के रूप में हो सकती, किसी रूप में, सिचुएशन के रूप में हो सकती, तो उसको चेक करें और उसे चेंज करें कि वो मेरे जीवन में इस रूप में ना आए। मेरी आत्मलीन की स्थिति से डायरेक्ट उसने मुझे नीचे गिरा दिया है। जैसे कि ठाकुर रामकृष्ण देव थे, तो स्वामी विवेकानंद जब पहली बार उनके पास आए तो उसका वर्णन किया है ठाकुर ने। ठाकुर ने कहा कि जब पहली बार वो कमरे में एंटर हुआ स्वामी विवेकानंद, तो उनके कपड़े बिल्कुल धूल धूसरित थे, उनके बाल बिखरे हुए थे, उससे देह का कोई भान नहीं था, टोटल आत्मलीन स्थिति, अपने में खोया हुआ था वो। आता है ठाकुर चारपाई पर बैठे थे, उनके निकट जो चटाई बिछी थी उस पर विवेकानंद जी बैठ जाते हैं। वही उनके जो दोस्त चार पांच जिनके साथ आए थे वो एंटर होते हैं, तो बिल्कुल सरसवर के आए हैं और आते से ही रूम में देख रहे हैं यहाँ क्या है, वहां क्या है, ये कैसा है, वो कैसा है, कौन बैठा है। तो ठाकुर ने उनके लिए कहा है कि उन सबकी बुद्धि भटकती हुई बुद्धि थी, जबकि इसकी बुद्धि एकाग्र थी, स्वयं में टिकी हुई आत्मलीन की स्थिति थी। तो हम योगी आत्माओं को ऐसे परख सकते हैं कि कौन आत्मलीन है। हम आत्मलीन नहीं है तो हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ भटक रही है। जैसे मम्मा का उदाहरण है, यज्ञ में मम्मा का मंत्र चल रहा है ना तपस्या, तो मम्मा कितनी सुना है कि मम्मा बहुत आत्मलीन रहती थी, परम धाम में ही उनका बुद्धि योग लगा रहता था क्योंकि उनकी बुद्धि की लाइन बिल्कुल क्लियर थी। तो मम्मा जब ज्ञान सुनाना है या कुछ काम करना है तो वो परम धाम से उनका बुद्धि योग नीचे लेकर आती थी। कितना सेल्फ कंट्रोल होगा मम्मा का खुद के ऊपर कि उनका बुद्धि योग वहीं टिका रहता था। आप सोचिए कितनी गहन तपस्या है मम्मा की। हम सीखें मम्मा से, इस मंथ में हम भी कोशिश करें कि हम भी उनकी तरह आत्मलीन रहने की कोशिश करें। फिर अगला पॉइंट है, पर आत्मलीन रहने में जो बाधा बनती है उसको हम हटाएं, वो कभी कभी की माया है। ज्ञान में जब माया आती, श्रीमत यदि हमने ब्रेक किया तो ज्ञान में माया जरूर आएगी और वो हमें फिर ज्ञान से दूर कर देती है। मुरली में रस नहीं आएगा, मनन चिंतन में रस नहीं आएगा, हर चीज की व्यर्थता का बोध होने लगेगा कि क्या वही बाबा मुरली सुनाते। ये भी भूल जाएंगे कि सुनाने वाली सत्ता कौन है जो मुझे सुना रही, भूल जाते हैं। ज्ञान में माया आई और बाबा से डिटैच हो जाते, तो हम अवेयर रहें कि हम श्रीमत का उल्लंघन ना करें, ज्यादा से ज्यादा श्रीमत पर चलते रहें। फिर अगला पॉइंट है मौन की साधना में कभी कभी की माया। मौन बहुत ऊंची साधना है, हमारा अपना स्वधर्म है मौन। हम परम धाम में जब रहते हैं तो टोटल साइलेंस में रहते हैं, कितनी खूबसूरत स्थिति है वो, जहां कोई संकल्प ही ना हो, हम बिल्कुल अपने स्वरूप में टिके हुए हों। तो मौन की साधना जो है उसमें कभी कभी की माया कैसे आ जाती, व्यक्ति के रूप में आ जाएगी। नहीं, मौन जब हम करते हैं, गहन तपस्या जब हम करते हैं, तो हमें सिद्धियां प्राप्त होने लगती, हम थॉट रीडर बनने लगते हैं, हमें भविष्य में क्या होने वाला है उसका ज्ञान होने लगता है। तो ये भी हमारे लिए कभी कभी की माया बन जाती है कि हम उन सिद्धियों में उलझने लगते हैं। भक्ति में महर्षि रमण ने मौन की ही साधना बहुत की है। वो टोटल मौन रहते थे, बहुत कम बोलते थे। उनके पास जो आत्माएं आती थी उनसे पूछने कि मैं कौन हूं, तो वो खाली एक या दो वर्ड बोलते थे और उनको अनुभव करा देते थे कि पूछने वाली वो चैतन्य सत्ता कौन है। वही आप हो, बस उस पर हमें अटेंशन रखना, हर पल दैहिक भान पर नहीं रखना है, आत्मिक भान पे रखना है। तो मौन बहुत ऊंची साधना है। हम ज्यादा से ज्यादा मौन रहे, ये हमारी मम्मा का संपूर्ण बनने का मंत्र चल रहा है, तो हम भी कोशिश करें बनने की। फिर अगला पॉइंट है महारथियों से कभी कभी की माया। महारथियों से हमें नहीं आती है, उन महारथियों को देखकर हम अपने जीवन में माया क्रिएट कर लेते हैं। उनके गुण विशेषता, उनसे प्रभावित हो जाते हैं, उनके नाम रूप में फंसने लगते हैं कि ये इतनी श्रेष्ठ हैं, है ना। तो उस रूप में माया जाती है, तो उस माया को हमें चेंज करना होगा, उस कभी कभी की माया को पहचान कर कि उन्होंने जिस रोशनी से, जिस चिराग से खुद को रोशन करके वो उस लेवल तक पहुंची है, उस रोशनी को लेकर हम खुद के जीवन को प्रकाशित करें, उनके प्रकाश से प्रभावित ना हो उनसे। तो हम कोशिश करें इससे बचने की, महारथियों की माया से, जो उनसे नहीं आई है हमने क्रिएट की है। फिर अगला पॉइंट है परमात्मा प्यार में और परमात्मा साथ में कभी कभी की माया। बाबा स्थूल, यदि स्थूल रीति से देखा जाए निचले स्तर पर, तो देहधारियों से आ जाएगी, इस रूप में आ जाएगी, लेकिन ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म तन में इस समय शिव बाबा है। सूक्ष्म तन में हम, सूक्ष्म तन में जाते हैं, बाबा से दृष्टि लेते हैं, शक्तियां लेते हैं, ब्रह्मा बाबा से कनेक्ट होते हैं। दादी गुलजार के तन में जब बाबा आते हैं डायमंड हॉल में, तो हम दादी के तन में बाबा को देखते हैं। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, हम दादी के तन में फंसने लगते हैं, ब्रह्मा बाबा में ज्यादा फंसने लगते हैं। प्रायोरिटी में पहले लिस्ट में ब्रह्मा बाबा, हमारे आदि पिता हैं, प्यारे पिता, हम पहले उनको देखने लगते हैं, फिर सेकंड नंबर पे शिव बाबा आता है। तो ब्रह्मा बाबा खुद भी कहते हैं कि बच्चे आपको अवेयर रहना है, मेरी देह में नहीं फंसना है। दादी दादियों को अटेंशन दिलाते थे बाबा कि ये कहने वाला कौन है, ये करने वाला कौन है। तो हम बाबा में, दादी में ना फंसे। जब हम लोग फर्स्ट बाबा मिलन के लिए नवंबर 2015 में आए थे, तब दादी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो बाबा नहीं आए थे। तो वहां से एक मैसेज सुनवाया गया था बाबा का जो आया था, तो बाबा ने उस मैसेज में कहा था कि ये जो आकर्षण बच्चे आपको दिखाई दे रहा है, ये गुलजार का नहीं है, ये मेरा है। तो हम अटेंशन रखें कि जो सारा फैला हुआ है, ये सब उसका है, उसका किया हुआ, वो हमें बना रहा है, वो हमें चला रहा है। फिर अगला पॉइंट है नष्टो मोह की साधना में कभी कभी की माया। मोह जो है, मोह जो विकार है ना, बहुत स्वीट विकार, बहुत मीठा प्यारा लगता है। क्यों? क्योंकि वो हमें अपनापन देता है, एक्स्ट्रा अटेंशन दिलाता है, एक्स्ट्रा प्यार दिलवाता है, एक्स्ट्रा केयर दिलवाता है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये मीठा जहर है। ठाकुर रामकृष्ण देव जो थे, उन्होंने बताया है कि विवेकानंद जी की चेतना को जागृत करने के लिए उन्होंने विवेकानंद जी को अष्टावक्र गीता पढ़ने को दी। विवेकानंद जी ने पढ़ना उसको स्टार्ट किया, तो उसमें स्टार्ट करते हुए उनकी चेतना बिल्कुल अंदर से हिलने लगी, आंदोलित होने लगी। उन्होंने जाकर ठाकुर को वो बुक दे दी कि मैं इसको नहीं पढ़ूंगा। तो ठाकुर ने कहा आप इसको क्यों नहीं पढ़ेंगे? तो वो कहने लगे मैं इसलिए नहीं पढ़ूंगा, तो ये तो मेरे सत्य अस्तित्व को ही नकार रही है कि आप ये शरीर नहीं, आप तो कुछ और ही हो। ये मुझे जो भोग आज संसार भोग रहा है, उन भोगों को वो विष के समान कह रही है, मैं इस अष्टावक्र गीता को नहीं पढ़ूंगा। तो ठाकुर फिर उनकी चेतना को जगाने के लिए युक्ति रचते हैं, उनसे कहते हैं कि मुझे ना आंखों में कम दिखाई देता, तू मत पढ़, लेकिन मुझे तो सुना सकता है कम से कम, क्योंकि मुझे सुननी है इस पुस्तक को। तो वो विवेकानंद से युक्ति से पढ़वा के फिर उनकी चेतना को जागृत करते हैं, अपनी शक्तियां भी देते हैं बाद में उनको। तो नष्टो मोह बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन विकारों को विष समझना होगा। ये कहीं ना कहीं मीठे जहर के रूप में हमारे जीवन में आते हैं और हमारी आत्मा को गिरा देते हैं, दैहिक स्तर पर ले आते हैं। तो इस कभी कभी की माया से हमें अवेयर रहना, क्योंकि हमारा अंतिम समय का पेपर है। नष्टो मोहा स्मृति, मोह का पेपर नष्टो मोहा के रूप में आएगा कि हम कितने बने, और सेकंड का पेपर होगा। ऐसा नहीं कि बहुत सारा टाइम भी हमें मिल जाएगा, तो इसका प्रिपरेशन हमें अभी से करना है कि ये विष है, मीठा विष। फिर अगला पॉइंट है इच्छा मात्रम अविद्या की साधना में कभी कभी की माया। जब हम ज्ञान में आते हैं, नए नए आते हैं, तो लगता है कुछ इच्छा नहीं, पाना था सो पा लिया, बाबा को पा लिया। फिर धीरे धीरे इच्छा जागती है, श्रेष्ठ योगी बनना है, श्रेष्ठ तपस्वी बनना है, ये तो खैर शुभ इच्छाएं हैं। फिर आगे जाके कुछ इच्छाएं कैसी जागने लगती, नाम चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए, ऐसी इच्छाएं भी जागने लगती है। हाँ, तो उस रूप में हमारे जीवन में इच्छा जागने लगती है। तो दादी कहती ना, चाहिए चाहिए चाहिए, वहां बाबा जाइए 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 हो जाता है, आप बच्चे हमारे जीवन से जाइए। तो हम इन कभी कभी की माया से अवेयर रहें और बाबा से ज्यादा कनेक्ट रहें। फिर स्वदर्शन चक्र में कभी कभी की माया आ जाती, हम स्वयं का दर्शन करते हुए हर एक कर्म कर रहे हैं, अवेयर है कि मैं आत्मा ये कर रही, स्वदर्शन के साथ हमारा कर्म चल रहा, परंतु स्वदर्शन कब परदर्शन में चेंज हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। माया उस रूप में हमारे जीवन में एंटर हो जाती है। शुभ भावना शुभ कामना में माया जाती, शिकायती चित्त के रूप में कि आखिर हम ही कब तक करते रहे, है ना। संकल्पों में माया आ जाती है कई रूपों में, शुभ जो श्रेष्ठ संकल्प है उनमें व्यर्थ के रूप में हमारे जीवन में माया एंटर हो जाती है। जैसे मैं नए नए ज्ञान में आई थी तो मुझे लगता था कि ब्रह्मा बाबा के पास, सुना था कि ब्रह्मा बाबा के पास जो भी आता था वो अशरीरी हो जाता था, निर्संकल्प हो जाता था। तो मैं भगवान के बच्चे हैं, सब भगवान के बच्चे हैं, सुना था तो लगता था यहाँ की हर एक आत्मा ब्रह्मा बाप समान है और मुझे अनुभव करा देगी। अल्पकाल के लिए अनुभव हुआ, लेकिन लंबे काल का अभी तक तो किसी ने नहीं कराया। खोज में हूँ कि वो आत्मा कौन है, ये हो सकता है बाबा ही कर। वो स्थिति बाबा के पास कोई आता था तो हो जाता था, मम्मा के पास आता था तो हो जाता था, हो जाएगा आमीन। तो आमीन। फिर क्या होता है, फिर तो व्यर्थ संकल्प के रूप में हमारे जीवन में माया आती, तो हमें समर्थ संकल्प करने होंगे, तब हम निर्संकल्प स्थिति में, अशरीरीपन की स्थिति में पहुंच पाएंगे। अब आखिर ये माया आती जा रही है हमारे जीवन में, कभी कभी की माया आती ही जा रही है, तो आखिर कब तक हम असत्य की पर्दों के पीछे, माया की पर्दों के पीछे भटकते रहेंगे। कभी ना कभी खुद से समय पर वो माया हटेगी, लेकिन बाबा कहता है आपको तो समय से पहले इस माया को हटा देना है। फिर आप सोचिए, जब वो माया की परतें हटेगी और हम अपने सत्य स्वरूप का अनुभव करेंगे तो वो कितना खूबसूरत होगा। मैं मुझका मेरा संपूर्ण अनुभव कर पाऊंगी, उस परम का अनुभव कर पाऊंगी, कितना खूबसूरत अनुभव होगा। लेकिन अब समय बहुत कम बचा है, और यदि हम समय पर नहीं करेंगे, कभी कभी की माया हमारे जीवन में एंटर होती रहेगी, तो फिर वो गजल की पंक्ति है ना, वो स्थिति हमारी हो जाएगी कि इतना टूटा हूं कि छूने से बिखर जाऊंगा, यदि और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा। यदि आप नहीं हट सकते, नहीं इस माया से बाहर निकल सकते हैं, तो इस माया का समर्पण उस परम के प्रति कर दे, वो बाबा हमें इस माया से निकाल लेगा। उसे याद करे, उसे पुकारे कि याद किया दिल ने कहां हो तुम, प्यार से पुकार लो बाबा जहां हो तुम। तो वो हमें जब प्यार से पुकार लेगा, संभाल लेगा, निकाल लेगा, बस हमें इतना करना है कि उस माया को बाबा के प्रति पूरी तरह समर्पित कर देना। तन मन धन और सब तो की है, अब माया का भी समर्पण कर दो कि बाबा मुझसे नहीं हो रहा, आपको करना है। अच्छा, ओम शांति।